संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 3 अप्रैल 2020 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। वैश्विक युद्ध विराम की अपील का काफी असर, मगर अभी और ज्यादा एकजुटता की जरूरत, कहा महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने। मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने भारत में तालाबंदी से लोगों को हुई परेशानी पर जताई गहरी चिंता, मानवता बनाए रखने की पुकार भी। भारत में तालाबंदी से कैसे प्रभावित हो रही हैं महिलाएं और यूएन वुमेन संस्था के क्या हैं उपाय, सुनिएगा एक इंटरव्यू। कोविड-19 से लड़ाई के लिए एक वैश्विक रूपरेखा तैयार, निम्न व मध्यम आय वाले देशों की मदद के लिए एक कोष की स्थापना। कोविड-19 के कारण मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और निगरानी प्रक्रिया में व्यवधान पर चिंता। और कोविड-19 के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर पड़ सकता है असर। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है यूएन न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया में आज केवल एक ही लड़ाई की जरूरत है, जो विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के खिलाफ साझा लड़ाई है। वैश्विक युद्ध विराम की अपील जारी होने के बाद उसके असर पर महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वैश्विक युद्ध विराम की उनकी पुकार को दुनिया भर में बल मिला है, लेकिन उसे असरदार ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करना बाकी है। उन्होंने चेतावनी जारी की है कि अनेक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में महामारी के कारण हालात अभी और बदतर हो सकते हैं, इसलिए शांति व एकता की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। एक डिस्पैच के साथ सचिन गौड़।
वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव ने कहा कि कई देशों और हलकों से उनकी इस अपील को समर्थन मिला है। 70 से ज्यादा क्षेत्रीय साझेदारों, सरकारों से इतर संगठनों, विकास लक्ष्यों के पैरोकारों और यूएन की ओर से शांति संदेश दूतों ने उनकी इस अपील को समर्थन दिया है। साथ ही पोप फ्रांसिस सहित धर्मगुरुओं ने अपनी नैतिक आवाज से और नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यमों पर एकजुटता के जरिए वैश्विक युद्ध विराम की अपील को मजबूती दी है। लेकिन महासचिव गुटेरेश का कहना है कि इस अपील को यथार्थ के धरातल पर पूरी तरह उतारने में अभी और प्रयासों की जरूरत होगी।
But there is a huge distance between declarations and deeds, between translating words into peace on the ground and in the lives of people. There are enormous difficulties.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि घोषणा करने और उसे वास्तविक रूप से अमल में लाए जाने में बड़ा फासला अब भी है। शब्दों को जमीन और लोगों के जीवन में शांति में तब्दील करना, गहरे अविश्वास, संदेहों और अन्य कई वजहों से युद्ध विराम को लागू करना कठिन है। इसलिए कई गंभीर हालात वाले इलाकों में लड़ाई में कोई कमी नहीं आई है, और जहां कुछ असर हुआ है वो भी नाजुक है और स्थिति कभी भी बदल सकती है। महासचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी परिस्थितियों से निपटने में हर संभव कूटनीतिक मदद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का तूफान अब हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का रुख कर रहा है और इस वायरस ने दिखाया है कि ये कितनी जल्दी सीमाओं को पार कर सकता है, देशों को बर्बाद कर सकता है और आम जीवन में उठा पटक ला सकता है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हालात अभी और बदतर हो सकते हैं, इसलिए वे सभी लोग जो अपनी आवाज के जरिए बदलाव ला सकते हैं उन्हें युद्ध में शामिल लड़ाकों से हथियार डालने की इस अपील में शामिल होना चाहिए। गौरतलब है कि 10 दिन पहले यूएन महासचिव ने दुनिया के हर कोने में तत्काल युद्ध विराम की अपील जारी की थी, ताकि जरूरतमंदों और नाजुक हालात वाले समुदायों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाना संभव हो सके।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा है कि भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन यानी तालाबंदी की अचानक हुई घोषणा से बुरी तरह प्रभावित हुए लाखों अंदरूनी प्रवासियों की विशाल तकलीफें देखकर वो बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इन कामगारों को लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर अपने कामकाज के स्थान छोड़कर अपने घरों व मूल स्थानों के लिए रवाना होना पड़ा, क्योंकि उनके पास भोजन व घर का किराया देने के लिए धन नहीं बचा था। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने गुरुवार को कहा कि भारत में लॉकडाउन को असरदार तरीके से लागू करना वहां की बहुत बड़ी आबादी और उसके घनत्व के कारण एक विशाल चुनौती है। मिशेल बाशलेट का कहना था कि हालांकि ये सुनिश्चित करना भी बेहद अहम होगा कि कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे उपायों में कोई भेदभाव ना हो और ना ही उनसे मौजूदा असमानताओं और नाजुक परिस्थितियों में कोई इजाफा हो। ध्यान रहे कि भारत में कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन लागू करने की घोषणा के बाद बहुत से दिहाड़ी मजदूरों के पास कोई कामकाज व रोजगार नहीं बचा था और उनके पास अपने घरों के किराए और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी कोई धन नहीं बचा था। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 31 मार्च को दिए उस निर्णय का स्वागत भी किया जिसमें प्रवासी जन के लिए समुचित मात्रा में भोजन, पानी, बिस्तर और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस सप्ताह के आरंभ में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन व सामाजिक दूरियां बनाने के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवासी जन सहित आम लोगों की डंडों से पिटाई कर रहे थे। कुछ प्रवासी जन पर तो साफ सफाई करने वाले रसायनों का भी छिड़काव किया गया था। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि ऐसे हालात में पुलिस सेवाओं पर बने दबाव को हम समझ सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को धैर्य दिखाना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में उन्हें बल प्रयोग व मानवीय बर्ताव के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होगा। उधर भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिसेलियन ने लॉकडाउन को जल्दबाजी में लागू किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आम जन को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। इस कारण सबसे कमजोर लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और वो भारत में अर्थव्यवस्था का एक विशाल हिस्सा हैं, उन्हें व्यवस्था करने या स्थिति को सही तरीके से समझने का समय नहीं मिला, इसलिए उनमें से अनेक अपने मूल स्थानों के लिए निकल पड़े। भारत में विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 से बचने के लिए एहतियाती उपायों के मद्देनजर तालाबंदी होने से महिलाओं की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन उन्हें पारिवारिक जरूरतों के साथ साथ अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। ये कहना है यूएन वुमेन संस्था की भारत में उप प्रतिनिधि निष्ठा सत्यम का, जिन्होंने कोविड 19 के कारण उपजी चिंताओं से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अहमियत पर बल दिया है। दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने निष्ठा सत्यम से बात की और पूछा कि कोविड 19 के कारण तालाबंदी से महिलाएं किस तरह प्रभावित हुई हैं।
मुझे लगता है ऐसी किसी भी स्थिति का जो महिलाओं पे इम्पैक्ट है वो ज्यादातर अलग होता है, लंबा ज्यादा रहता है और कई बार बड़ा इर्रिवर्सिबल भी रहता है। खास करके अगर आप इस स्थिति में देखिए तो महिलाएं वैसे भी एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में भी आखिर आती हैं लाइन में, जब न्यूट्रिशन की बात हो, जब हेल्थ केयर सर्विसेज की बात हो, तो ऐसे सिचुएशंस में वो और भी पीछे हो जाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है देखने की वो ये है कि ऐसे सिचुएशंस पे महिलाओं पे जो भार है अनपेड केयर वर्क का वो डबल ट्रिपल हो जाता है रातों रात, तो, और वही इकोनॉमिक फ्रेंचाइज और ऑटोनॉमी जो उनको अपने काम से मिलती है वो भी नहीं होती उनके पास। तो अगर आप देखें तो मल्टीपल तरीकों से जो है महिलाएं और मार्जिनलाइज होती हैं और पीछे होती हैं।
क्या आपको लगता है कि शहर में रहने वाली कोई मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय महिला है उसके मुकाबले जो गांव की गरीब महिलाएं या जो शहरों में ही गरीब महिलाएं हैं जो दिहाड़ी पर काम करती हैं, क्या उनकी स्थिति और उनकी कठिनाइयां अलग अलग हैं?
बिल्कुल, उनकी कठिनाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल और खैर जायज भी नहीं होगा कि हम ये बता पाएं कि किसकी कठिनाई ज्यादा है, क्योंकि कुछ ज्यादा कम नहीं होता, लेकिन अलग जरूर हो सकती हैं। जैसे कि आप देखिए कि रूरल जो महिलाएं जो डेली वेज इनकम अर्नर हैं, उन जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके पास आज ना काम है, वो ज्योग्राफिकली डिस्प्लेस है, अपने घरों से दूर है, एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि बहुत सारा उस वर्ग के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो आप देखिए कि वहाँ जो दिक्कतें हैं वो अलग किस्म की हैं, और जो अर्बन वर्किंग वुमन है वो एकदम से अब घर में, घर की चार दीवारी के अंदर है, तो जो प्राइवेट स्पेस है वो पब्लिक स्पेस बन चुका है। तो ऐसे में हमने देखा है कि जो हिंसा का मुद्दा है वो निकल कर आता है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होता है घरों के अंदर वो बढ़ता है ऐसे इंस्टेंसेस में, और जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो ज्यादा डिजर्टेड हो गए हैं, तो उनको बाहर जाने में भी खतरा ज्यादा है। और जो घर के रहने वाले सदस्य हैं वो उनकी जो डिमांड्स हैं, जैसे कि आप और हम ही देख लीजिए, कोई भी आम महिला जो घर में आ चुके हैं उन पे ज्यादा डिमांड्स हैं कि भाई अब आपको घर में बच्चों की, बुजुर्गों की, घर में दूसरे घर वालों की खातिर करनी है, घर का सारा काम जो जिसको हम अनपेड केयर वर्क करते हैं वो आप पर है, और एक तरफ से वो काम भी अपना कर रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं दैट विमेन जो महिलाओं पर ट्रिपल बर्डन जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग दिक्कतें हैं, लेकिन अमूमन अगर आप देखें तो किसी भी तरीके से महिलाएं जो हैं इन स्थितियों में ज्यादा पीछे होती हैं और उन पर ज्यादा भारी पड़ती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग कोविड के रिस्पॉन्स में काम कर रहे हैं वो महिलाओं को सेंटर स्टेज करें, को बिल्कुल बीच में रखते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करें।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी WHO के महानिदेशक ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए मृतकों की बढ़ती संख्या और वायरस की तेज होती रफ्तार पर गहरी चिंता जताई है। एक अपडेट के साथ सचिन गौड़।
विश्वव्यापी महामारी COVID-19 से संक्रमितों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है और अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित किया और बताया कि ये एक स्वास्थ्य संकट से कहीं ज्यादा है।
We know that this is much more than a health crisis. We are all aware of the profound social and economic.
महानिदेशक घेब्रेयेसस कह रहे थे कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए देशों ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसका परिवारों और लोगों पर भारी असर हुआ है और समुदायों व देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। जीवन और आजीविका बचाने की इस साझा लड़ाई में हम सभी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के मामले चौथे महीने में प्रवेश कर रहे हैं और वैश्विक फैलाव में तेजी गहरी चिंता का सबब है। मौजूदा हालात से जिन समुदायों पर गंभीर असर हुआ है उनकी मदद के लिए भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जाना होगा। उन्होंने कहा कि कई विकासशील देशों के लिए इस प्रकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे देशों को कर्ज से राहत दिया जाना बेहद आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यही अपील है, विकासशील देशों के लिए कर्ज से राहत। महामारी के दौरान अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए UN एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि हालात बेहतर होने पर पोलियो की वैक्सीन पिलाने के काम को फिर से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कई देशों में तालाबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इस पर UN एजेंसी चिंतित है। इससे निपटने के लिए प्रदान की जाने वाली मदद को आवश्यक सेवाओं में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को एक नई योजना पेश की जिसमें विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के विनाशकारी नतीजों से निपटने की रूपरेखा बनाई गई है और निम्न व मध्यम आय वाले देशों के लिए एक वैश्विक कोष बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी समाजों की बुनियाद और लोगों की आजीविका के साधनों पर हमला कर रही है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण बन रही है और मौजूदा हालात से वैश्विक अर्थव्यवस्था व देशों पर दूरगामी दुष्प्रभाव होने की आशंका प्रबल हो रही है। दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग यूनेस्केप के दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी एशिया कार्यालय के निदेशक डॉक्टर नागेश कुमार से खास बातचीत की।
कोविड संकट का विश्व पर जो सामाजिक आर्थिक असर पड़ सकता है उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक योजना जारी की है, उसमें मोटे तौर पर क्या कहा गया है?
उसमें ये कहा गया है कि पिछले 75 वर्षों के रिकॉर्ड में, मतलब जब से यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ अभी 75 साल हो गए हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार से इतना भयंकर संकट विश्व के लिए कोई नहीं पाया। और ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है, मतलब ये इसके बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं। ये भी कहा गया है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो मंदी में ऑलरेडी चली गई है और उसके काफी हैं सब लोगों के लिए होंगे, खासतौर से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको इससे बड़ा मतलब प्रभावित होंगे वो लोग। और ये हम देख सकते हैं भारत में कितने लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, 80%, तो उस इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं। तो ये सिचुएशन सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही इम्पैक्ट हो रहा है। जो कदम उठाने चाहिए उनकी बात करी गई है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि 2020 और 21 शायद फिर से मंदी के दौर में जा सकते हैं, वो भी 2008-09 की मंदी से भी बदतर, जैसा कि अभी आपने भी कहा। तो दक्षिण एशिया के लिए इस सब के क्या मायने हैं?
मतलब ये कोविड का शुरू होने से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था और कई दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज की अर्थव्यवस्था थोड़ा स्लो डाउन के मोड में थी और उस स्लो डाउन से उबरने की तरफ मतलब झुकाव दिखाई दे रहा था। ग्रीन शूट्स की जैसे बात करें तो ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो ग्रीन शूट्स का प्रभाव दिखाई देता, उससे पहले ही जो कोविड का संकट खड़ा हुआ है, मतलब स्लो डाउन से निकलने की जो ट्रेजेक्टरी थी उसको बिल्कुल अपसेट कर दिया है। और अपसेट ऐसे कर दिया है कि अभी तो जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन कई सेक्टर्स इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि उसमें बिल्कुल मतलब आउटपुट जो है वो दिल पर पहुंची। जैसे उदाहरण मतलब एयर ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली स्टॉप, रेल्स, ट्रेन्स, बसेस इज ग्राउंडेड। देन आई वुड टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या है, लोग इन्फॉर्मल सेक्टर के कितने सारे वहाँ लाखों करोड़ों लोग रोजगार मिलता है वो सब बंद हो गए। तो ये जो मतलब स्लो डाउन से उबरने से पहले ही आर्थिक विकास की दर हम सोच रहे थे कि अब उबर जाएगी, वो उबरने का प्रोसेस अब अपसेट हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान एजेंसी WMO ने कोविड 19 के कारण मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और निगरानी प्रक्रिया में आने वाले व्यवधान पर चिंता जताई है। UN एजेंसी का कहना है कि आंकड़ों की उपलब्धता और मौसम विश्लेषण की गुणवत्ता प्रभावित होने से पूर्व चेतावनी प्रणाली पर भी असर पड़ने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
UN एजेंसी के महासचिव पेटेरी टालस का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की कठिन चुनौतियों के बावजूद विभिन्न देशों में मौसमी बदलावों पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन ये भी सही है कि इन क्षमताओं और संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम मौसम और जलवायु संबंधी सभी सेवाओं के लिए एक बेहद मजबूत आधार प्रदान करता है। इसी के जरिए 193 सदस्य देश अपने नागरिकों तक मौसम संबंधी जानकारी पहुंचाते हैं। इस प्रणाली की मदद से वायुमंडल और महासागरों की सतह की स्थिति पर भूमि, समुद्र और आकाश में तैनात उपकरणों से नजर रखी जाती है। इस प्रक्रिया से एकत्र डेटा का उपयोग मौसम विश्लेषण, पूर्वानुमान, सलाह और चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर निगरानी प्रणाली जैसे सैटेलाइट और भूमि स्थित नेटवर्क आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित यानी ऑटोमेटेड होते हैं और ऐसे उपकरण कई हफ्तों तक बिना किसी मुश्किल के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोविड 19 से उपजी चुनौती लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर ऐसे उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव, आपूर्ति और पुनर्तैनाती चिंता का सबब बन जाएगी। मौसम निगरानी प्रणाली के अन्य हिस्से पहले से ही प्रभावित हैं, जैसे हवाई यातायात में भारी कमी आई है, उड़ान के दौरान विमान आसपास के तापमान, हवा की गति और दिशा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करते हैं, जिसका इस्तेमाल मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी में किया जाता है। कोविड 19 के कारण हवाई यातायात में कमी आने से पहले कमर्शियल विमान प्रतिदिन 7 लाख से ज्यादा आंकड़े एकत्र करने में योगदान देते थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए यूएन एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बावजूद सरकारों को मौसम पर नजर रखने की क्षमता और पूर्व चेतावनी मुहैया कराने वाली प्रणालियों पर ध्यान देते रहना होगा।
संयुक्त राष्ट्र की 3 प्रमुख एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि कोविड 19 से अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करते समय देशों को ये ध्यान में रखना होगा कि व्यापार संबंधी ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिनसे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी फूड सप्लाई चेन या खाद्य सुरक्षा पर असर पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस, खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख क्यू डोंग्यू और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवाडो ने एक साझा बयान जारी किया है। बयान में आगाह किया गया है कि कई बार निराधार कारणों से खाद्य व्यापार पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिनसे फूड सप्लाई चेन में व्यवधान पैदा होता है और इससे जरूरतमंद और नाजुक हालात में रह रहे लोग ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस तरह के व्यवधानों से कृषि और खाद्य उद्योग में कर्मचारियों की आवाजाही में भी अवरोध खड़े होते हैं और भोजन के कंटेनर व ट्रकों को सीमा चौकियों पर इंतजार करना पड़ता है। इससे भोजन के बर्बाद होने की आशंका गहराती है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण कई देशों में तालाबंदी लागू होने के बावजूद व्यापार को जारी रखने और खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाने होंगे। साथ ही ये भी जरूरी है कि अन्न उगाने वालों और खेतों से बाजारों तक खाद्य सामग्री को पहुंचाने में जुटे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ताकि फूड सप्लाई श्रृंखलाएं बरकरार रखी जा सकें और बीमारी के फैलाव की रोकथाम हो सके। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। दोस्तों, कोविड 19 महामारी से लड़ाई में मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखें और इंसान होने के नाते एक दूसरे का खूब ख्याल रखें। अब महबूब खान को इजाज़त दीजिए।